Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, इंडिया ये एक बहुत बड़ा हेरिटेज है। इसके अंदर कई सारे तरह के कल्चर्स हैं, कई सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, जो कहीं ना कहीं आज हमें तय करना है कि क्या हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं या कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिसके वजह से हम पीछे की ओर जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा ऑथेंटिक इंडियन कल्चर ये हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से उसे वापस कायम किया जाए और जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं उसे कैसे भरा जाए। उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके सतीश भाई जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। भाई जी, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपसे इस तरह के सवाल पूछना आई थिंक यहीं पर हमें सही जवाब मिल पाएंगे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जो जर्नी रही है उसके अंदर आपने इंडिया को बहुत ही बारीकी से देखा है। आपके गीतों में, आपके पोएट्रीज में हमने उसका एक झलक भी देखा है। इंडिया इज़ अ बिग हेरिटेज। एक ज़माना था जब हम सभी एक ही छत के नीचे परिवारों के परिवार एक साथ रहा करते थे।
बिल्कुल।
प्यार भी था, एक दूसरे के लिए सम्मान भी था, एक दूसरे के लिए सद्भावना भी थी।
बहुत अच्छा।
लेकिन आज मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ गलत हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वो जो प्यार था वो खोसा गया है
जी, जी।
इसका कारण क्या है?
बहुत अच्छा प्रश्न, और आप समीचीन प्रश्न पूछा है, समसामयिक प्रश्न पूछा है जो आज की आवश्यकता है। चूंकि भारतीय संस्कृति को हम सब जानते हैं कि सारे संसार जो है भारतीय संस्कृति का लोहा मानता है
जी।
उसके मूलभूत जो तत्व हैं उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है
जी।
कि भारतीय संस्कृति सदियों से सारे संसार को किस लिए और कैसे राह दिखाती रही है
जी।
उस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है
जी।
मैंने जो महसूस किया, मैं बहुत विद्वान तो नहीं हूँ और न मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार हूँ, बहुत छोटा सा हूँ। उस ईश्वर की देन जो मिली है उसके द्वारा मैं यही समझता हूँ कि यदि भारतीय संस्कृति को कुछ शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे एक फैक्टर है जीवन के अंदर संयम और नियम।
ओके।
इसी को लोग अलग अलग ढंग से कई रूप से प्रतिपादित करते हैं, जिस कोई ब्रह्मचर्य कहता है, कोई इसको पवित्रता कह लेते हैं, कोई सादगी और जीवन का शील जो महसूस करता है। तो वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में वर्ण आश्रम व्यवस्था है। तो आश्रम व्यवस्था में ये 25 वर्ष तक विद्यार्थी जब तक अध्ययन करें, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तो उनकी बुद्धि में दिमाग में ज्ञान बैठ सकता है। ये भारतीय आश्रम व्यवस्था के अंदर बहुत अच्छा है। फिर 25 वर्ष जो है वो गृहस्थ आश्रम में है, जिसमें वो संतानोत्पत्ति करके परिवार को बढ़ाएं और उसकी पालना करें। फिर होता है वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो इस तरह से अलग अलग रूप है संन्यास और वानप्रस्थ होता है। तो कहने का भाव ये है कि आज वो चीज़ें देखा जाता है तो बहुत स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति में जो तत्व थे, चाहे वो ब्रह्मचर्य था, चाहे वो अतिथि देव भव था, चाहे वो संयुक्त परिवार था, चाहे वो नारी सम्मान था। एक आपने वो गीत भी सुना होगा जिसमें ये कहा गया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उसकी महेंद्र कपूर जी ने गाया है, बहुत अच्छी उसमें लाइनें हैं कि यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, इंसान तो क्या। ये सम्मान की भावना, तो जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, अतिथि सत्कार की भावना होनी चाहिए
जी।
जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं होनी चाहिए, जो चरित्र निर्माण की बात होनी चाहिए, ये सब चीज़ें दिनों दिन जो है वो चीज़ दूर होती जा रही हैं। और यही भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता इसको ही कहते हैं, और बिना आध्यात्मिकता के भारतीय संस्कृति जैसे आत्मा ही ना हो।
अच्छा, इसलिए
हाँ जी जी। एक बार यहाँ अब्दुल कलाम जी आए
जी,
अपने पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं तब तो राष्ट्रपति रहते हुए बने, तब भी आए और पहले भी आए। तो उन्होंने एक बार दादी जी से प्रश्न पूछा कि दादी जी क्या बात है कि सदियों से ढेर सारी चीज़ें, भारतवर्ष जो है गुलाम भी रहा, सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष ने कभी भी, इतना बड़ा देश होते हुए भी उसने कभी भी किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया। उसको कभी ये नहीं आया कि मैं आक्रमण करूं, किसी का छीनूं, मैं विस्तार कर लूं, देश बड़ा बन जाए, मैं इनकी रोटी खा लूं, उनकी नहीं खाऊं। क्या कारण है कि सक्षम होते हुए भी भारतवर्ष ने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया? तो दादी जी ने बहुत उत्तर दिया कि भारत आध्यात्मिक देश रहा है। भारत जो है सारे जगत को देने के लिए जिसे माता पिता होते हैं, तो क्या माता पिता कभी बच्चों के ऊपर अटैक करके उनका कुछ छीनते हैं, खाते हैं? कभी नहीं। तो इस उदाहरण से हमें इस बात का पता लगता है कि यदि हम थोड़े भी आज के जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे संयुक्त परिवार को विघटन की ओर ले जा रहे हैं, आज पति पत्नी भी साथ में एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं, आज जो कन्याएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिस जहां सम्मान था नारियों का, बड़ा सम्मान होता था, आज अखबार में देखिए तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये सब कहने में भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ कहा जाए, लेकिन सच बात तो यही है कि हमारे आगे एक भारतीय संस्कृति कहाँ क्या थी और आज उसका रूप ये है। तो इसमें बेशक हर व्यक्ति महसूस करेगा कि आज समाज में जो भी घट रहा है ये उचित तो नहीं है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इस बात के लिए मैं कहूँगा कि मेरे साथियों, यदि सचमुच हमारे अंदर भारत की संस्कृति और भारतवर्ष के प्रति हमारे अंदर प्रेम है, एक कतरा भी हमारे लहू में भारतीयता का और भारतीय संस्कृति का बह रहा है
जी।
तो हमें कम से कम, हम औरों को देने से पहले हम अपने आप को परिवर्तन करें। क्योंकि यदि हम भारतीय संस्कृति का उत्थान चाहते हैं, यदि हम सारे समाज का कल्याण चाहते हैं और सारे मानवता का कल्याण चाहते हैं, तो उसकी सबसे अच्छी रूपरेखा यही है कि मैं खुद को बदलूं, सारा विश्व बदलेगा।
दिस इज सो ब्यूटिफुल भाई जी। कई बार ऐसा होता है कि आज की अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा हम पर प्रभाव पड़ा है।
जी जी।
मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है
जी,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर में जिसके वजह से हमारा जो ऑथेंटिक इंडियन कल्चर है वो प्रायलोप सा होता जा रहा है
जी।
आपके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन और जो वेस्टर्नाइजेशन है
जी,
उसका किस हद तक पॉजिटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है जिससे हमें पता चल सकता है कि जो नेगेटिव है हम उसे हटा दें, कैसे पॉसिबल है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग अपने वार्तालाप में अक्सर करके ये टॉपिक लेते हैं, आधुनिकता और आध्यात्मिकता
जी।
आध्यात्मिकता जिस तरह से हमने राजयोगी जीवन में, राजऋषि जीवन में, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद जो जीवन में पाया, मैंने करीब से महसूस की ये परमात्मा की देन है और इस ईश्वरीय ज्ञान की यहाँ की खूबी है, विशेषता है, जो जीवन को बड़ा सात्विक बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। अच्छा सात्विक का मतलब, मेरे कहने का मतलब, जिसकी सोच भी अच्छी हो, जो किसी को आज तक भी जैसे कि हाँ से कहीं थप्पड़ भी ना मारे हो और जीवन में किसी को भी बुरी नीयत से कभी किसी को इतने ज़्यादा देखा भी ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जीवन तो बहुत, ऐसा लगता है
बिल्कुल,
कि
बिल्कुल।
बहुत महान जीवन है, ये आसान नहीं आज की इस क्लाइमेक्स में, आज के वातावरण इन्वायरमेंट जैसा बन गया है। मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, और मैं ये महसूस करता हूँ कि आज इस ज़िंदगी को जीने के लिए मैंने इतना आसान महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का रोम रोम और एक एक सेकंड सेकंड कह रहा है, अगर ज़िंदगी जियो तो ऐसा जियो।
ब्यूटिफुल।
जो आध्यात्मिकता भी है, जिसमें अपनापन भी है, जिसमें सामाजिकता भी है, सबके लिए सरोकार की भावना भी है, सबके साथ मिलकर के चलने की भावना भी है, और इस कठिन दौर में मुस्कुराना सबसे बड़ी कला है।
बिल्कुल।
अगर हमारी संस्कृति अच्छी हो तो उसका मतलब ये है कि हमारा सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, अच्छी भावनाएं हों, उदात्त भावनाएं हों, हम अपने मन की कमजोरियों पर विजय पाना सीखें। कौन नहीं चाहता है कि हमारी संस्कृति अच्छी हो जाए, कौन नहीं चाहता मेरा जीवन अच्छा बन जाए, लेकिन एक अच्छे जीवन जीने के लिए जो मन में कमजोरी है, हमारी आदतें कमजोरी की आदतें हैं, या समझे जो बुराइयां हैं, जो व्यसन है, जो तनाव है, जो चिंता है, जो मायूसी है, उन सब जो मनोविकार हैं, उनके ऊपर हमको अंकुश लगाने के लिए आत्मनिष्ठ होना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन भी चाहिए, अपने विषय में देखना चाहिए कि ये जो बुराइयां हैं ये मुझे कहाँ लेकर जाएंगी, इसलिए उनके ऊपर हम विजय पाने के लिए प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर थोड़ा राजयोग का अभ्यास किया जाए, जिसको कि हम रात दिन कर रहे हैं, उससे हम पर विजय मिली है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं निवेदन करूंगा कि वो जहाँ कहीं भी हों, अपने जीवन में बड़ी साधारण चलते फिरते सब काम करते हुए भी वो राजयोग का थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो उनका जीवन संस्कृति से निष्ठ हो जाएगा, चरित्र निर्माण भी होगा, संयुक्त परिवार का आनंद भी ले सकेंगे, परिवार में आने वाले सभी तनावों से भी मुक्त रहेंगे, चिंता भय जितने भी चीज़ें हैं, क्योंकि इस जीवन में सबसे दो बात बहुत आवश्यक है
जी,
एक है साथीपन और दूसरा है साक्षीपन।
ओके,
साथीपन का मतलब है फ्रेंडशिप। आज अगर हम मजबूत होना चाहते हैं तो हमारे दोस्त में हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो हमारा एरिया है, उनके साथ अच्छा मेल व्यवहार हो। अकेले व्यक्ति तो उदास हो सकता है, वो सन्यासी जैसा ही दिखाई पड़ेगा, तो हमको सबके साथ मिल करके संगठन में, परिवार में रहने की कला आ जाए। तो परमात्मा को साथी बना लेंगे, अपना साथी, सच्चा साथी बना लेंगे, और सब साथी तो हैं, उसको अपने साथ में करीब से महसूस करें कि वो मुझे देख रहा है, मुझे सलाह दे रहा है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरी रक्षा कर रहा है, उसका कदम कदम पर मुझे आभास हो रहा है
जी।
एक बहुत प्यारा सा गीत इस संबंध में एक गीत का निर्माण हुआ और सुरेश वाडकर जी ने गाया, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी दो लाइन कुछ मैं आपको सुनाऊं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है।
ब्यूटिफुल भाई जी, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ये आज हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम इन चीज़ों से, ऐसे में हमारे कल्चर पर उसका असर पड़ रहा है, हमारे रहन सहन पर उसका असर पड़ रहा है, हमारे खान पान पर उसका असर पड़ रहा है, हमारे कपड़े पहनने के तरीकों पर उसका असर पड़ रहा है। ऐसे में इस थॉट पर आपकी क्या राय है कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन और जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन कल्चर पर किस तरह से पड़ रहा है?
बिल्कुल, बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आवश्यक भी है। आपने बहुत अच्छा सूझबूझ से पूछा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा असर पड़ा है
जी,
लेकिन हम हर कदम कदम पर वेस्टर्न कल्चर करके हम दोषी क्यों बनाते हैं
जी?
सही बात तो यह है कि आप अपने कल्चर को क्यों नहीं इतना अच्छा बनाते हैं कि हमारे कल्चर का प्रभाव वेस्टर्न लोगों के ऊपर पड़े।
वाओ, ओके, ये मैंने सोचा ही नहीं था।
हाँ, जी जी, उनके कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना, इसका मतलब हम वीक हैं, बड़े कमजोर हैं।
करेक्ट,
हम ऐसे अपने में रहें, हमारे कुछ मान्यता है और समाज के जिस तरह बदलाव होते हैं उसी बदलाव से सब गुजरते हैं
जी।
जैसे कहा गया कि यूनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो जब विदेश में और जो दूसरे देश हैं उन लोगों की जो संस्कृतियां जब गिरावट में आई तो उनका नामो निशान खत्म हो गया
जी,
लेकिन भारतीय संस्कृति अभी तक भी कायम है। इतने तूफानों, इतनी झंझावातों से कितने विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल ध्वस्त करके समाप्त करने की कोशिश की
जी।
लेकिन ये भारत की संस्कृति की आत्मा है, भारतीय संस्कृति की, उसमें आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता जहाँ पर है वो अमरत्व प्राप्त करता है।
बिल्कुल।
तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता के आधार पर अमर रही है, और आज जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसमें वेस्टर्न कल्चर भी है, उसमें हमारी अपनी सोच भी है, अपने ढेर सारी चीज़ें, और चारों तरफ से आया है
जी।
तो किसी एक कल्चर को दोष देने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा भारत, हमारी संस्कृति फिर से कितने आगे बढ़े, स्वच्छ बने, सारे संसार को मार्ग दिखाए। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि यदि आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और उसको हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो संस्कृति के हम सब पोषक हैं, जिसमें लेखक आते हैं, जितने भी कलाकार आते हैं, रचना करने वाले आते हैं, वो सब इस क्षेत्र में आते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान आज हमारी संस्कृति में अगर डिग्रेशन है, पतन है, अधो गति को प्राप्त हो रहा है, गिरावट है जिसको आप कह सकते हैं, उसका जो कारण है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो फिल्मों का है।
अच्छा।
हाँ, फिल्मों ने आज हमारे भारत समाज ने पूरे संसार को जिस तरह से जो दिया है, जो हमको कभी ख्वाब में भी नहीं होता था, ख्याल में भी नहीं आता था, आज देखिए तो फिल्मों से क्या नहीं सीखता है समाज।
बिल्कुल।
पूरा जगत सीखता है, और इतना प्रभावित है कि बाहर ना भी जानता हो कुछ, लेकिन जब घर के भीतर में कोने में जब कोई नहीं देख रहा है, तो एक सामने वो लट्टू बना है, पुलिस बॉक्स, बुद्धू बॉक्स जो बना हुआ है, उसमें सारी दुनिया की सूचनाएं, सब चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आज जिस तरह से फिल्म जगत में जो हमारी कला का और संस्कृति का जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है, बाजारीकरण जो हुआ है, उसके चलते हुए लोग जो है पैसे के लिए अपनी सब चीज़ को समाप्त कर देते हैं, ये बहुत ख़राब बात है
जी।
ये सचमुच कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ेगा, हमें सिंसियरली सोचना पड़ेगा। खास करके जो हमारी परिवार में सब किस तरह से रहा करते थे, बहनें हमारी कैसे हैं, बहुएं कैसी हैं, बेटियां कैसी हैं, हमारी माता कैसी हैं, वो भी तो एक नारी जगत के हमारे अलग अलग संबंध हैं
जी।
लेकिन हमारी माँ के साथ जो संबंध है, हमारी बहन के साथ जो संबंध है, बेटी के संबंध है, वो हम पत्नी के साथ अलग संबंध, उस आउटलुक अलग से देखते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन हम घर को तो अपने अच्छा मानना चाहते हैं, अपनी बेटियों के प्रति, बहन के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन हम जब बाहर आते हैं, जगत में आते हैं, तो हमारी जो आँख है वो देखती शरीरों को देखती है। और फिल्मों ने जिस तरह से शरीर का प्रदर्शन किया है, अंग प्रदर्शन किया है, और जिस तरह से भारतीय कल्चर को प्रदूषित किया है, वो अच्छा नहीं। मैंने अभी कुछ पहले व्हाट्सएप पे एक ऐसे पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। तो ये कहने क्या है कि एक पिता ने अपनी कम पहनने वाली बेटी से कहा कि बेटी तुमने अभी तो स्मार्टफोन लिया और इतना प्यारा सा, इतना महंगा फ़ोन लिया, लेकिन तुमने उसको कवर कर लगा दिया है, उसके ऊपर लगा दिया, तो वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा सुंदर, ये तुमने क्या किया? कहा पप्पा, इतना वैल्यूबल, इतना अच्छा कॉस्टली हमारा फोन है, अगर उसे कवर नहीं करेंगे तो स्क्रैच लगेगा उसमें,
गिरेगा,
टूट जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो पिता ने कहा बेटी, ये शरीर भी बड़ा वैल्यूबल है, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, इसको इस तरह भी रखो कि इसकी सुरक्षा भी रहे, सावधानी पूर्वक चलाओ, क्योंकि शरीर है तो संसार है, शरीर को आत्मा चलाती है, सारा आत्मा भी नहीं, सारा शरीर भी नहीं, लेकिन शरीर के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहिए। अगर हम भारतीय संस्कृति में इतना भी योगदान हो कि हम एक सुशील, सभ्य, एक अच्छी भारतीय नारी के रूप में हम दिखाई पड़े, अंग प्रदर्शन न करें, चाहे वो पैसे के लिए हो, कुछ भी हो, पैसा इतना ज़्यादा सर्वोपरि नहीं है कि हम अपने शरीर का इस तरह से प्रदर्शन करें।
बिल्कुल।
तो मैं अपने कलाकारों से, कला जगत के, फिल्म जगत के, और पूरे संसार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम सचमुच भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, तो हमें अपने वस्त्र विन्यास, अपने केश विन्यास, अपने जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, ये चरित्र निर्माण में आगे बढ़े, क्योंकि कहा गया है कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से, वादों नारों से
जी,
राष्ट्र नहीं बनता ऊँचे मंदिर मस्जिद मीनारों से, राष्ट्र नहीं बनता उद्योगों व्यापारों से, या राष्ट्र नहीं बनता हथियारों तलवारों से, राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से, राष्ट्र बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से। तो मैं कहना चाहूंगा
जी
कि सब कोई मिल करके हम सब आए और न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, अगर हम सारे संसार को जीवित देखना चाहते हैं, फिर से इसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं, आपस में सब हिलमिल के रहें, तो हम आज ही कुछ संकल्प करें परिवर्तन का। केवल सुन ले नहीं, मन में संकल्प करें कि यदि मेरे अंदर देश प्रेम है, यदि भारतीय संस्कृति को हम फिर से लाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आए, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सब सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, सबका कल्याण होगा और इस तरह से हम सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं।
भाई जी, आज की जो हमारी जर्नी रही है, हमने उन उन बातों पर रोशनी डाली जिसे आज तक शायद हम नज़रअंदाज करते आए। इंडियन कल्चर पे हमने चर्चा की जो कि बहुत ही रिच है, बहुत ही डिवाइन है और बहुत ही एनलाइटमेंट से भरा है।
No doubt.
हमने जान लिया कि किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के रहते हुए भी हम अपने इंडियन कल्चर को इंटैक्ट रख सकते हैं, और खुद हम ऐसा बने कि वेस्टर्न लोग जो है वो हमसे इन्फ्लुएंस हो, ना कि वाइसा वर्सा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
धन्यवाद
दोस्तों। आज के एपिसोड में हमने जाना कि इंडिया ये एक ऐसा हेरिटेज है जिसे हम जितना ज़्यादा और निखारेंगे उसकी ब्यूटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। हमने ये जाना कि इंडियन कल्चर इतना रिच है कि अगर हम उसकी वैल्यूज से इंटैक्ट रहें तो हम पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ है, अगर हम उन्हें दूसरों को और ज़्यादा बेहतर बनाने में या पूरे विश्व को और ज़्यादा बेहतर बनाने में अगर उसे यूज़ करें, तो उसकी रियल वैल्यूज़ निखर कर आएगी और हम एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।